हम आप सब का आज इस सुबह के खुदा के कलाम के सुने जाने के बारे में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं सारी दुनिया के लोग जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं कि भाई फ्रैंक को वो नई शक्ति और सामर्थ और कुव्वत देता है, जिससे कि वो प्रभु के वचन को, खुदावन के कलाम को हमारे सामने दे सके। और आज सुबह भी हमारी ये दुआ है कि वो अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भाई फ्रैंक को प्रेरित करे, और वो जिससे कि वो बातें हमें बता सकें जो कि कलीसिया से रूह क्या कहना चाहता है, प्रभु क्या कहना चाहता है। इससे पहले कि हम कलाम पढ़ेंगे, और यहूदा की पत्री जूट, यहूदा 3:24-25 तीन आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना जरूरी जाना, आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब 24 आयत में हम जा रहे हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और हमेशा होता रहे, आमीन। आमीन। आप भाई फ्रैंक, हम खुदावन के बड़े धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि हम इन ब्रॉडकास्ट को जारी रख सकते हैं। और हमने अभी अभी सुना एक इतना शक्तिशाली कलाम, अभी हमने सुना कि उस विश्वास के लिए यत्न करते रहो जो के पाक लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, तीसरी आयत में हमने पढ़ा। और फिर और ये भी कि हम उसके सामने निर्दोष पाए जाएं जब वो आए और अपने लोगों को घर ले जाने के लिए जब वो आए। हम बड़े खुश हैं कि हर जगह पर, सब जगह पर लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये जो ट्रांसमिशन भेजा जा रहा है, ये सारी दुनिया में जा रहा है और हर एक और बहुत सारी भाषाओं में जा रहा है और सुना जा सकता है कि खुदावन ने क्या वादे हमारे साथ किए इस वक्त के लिए, इस समय के लिए, और वो आज क्या कर रहा है और इस वर्तमान में, इस समय में वो क्या कर रहा है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये वो जो मीटिंग्स हैं, ये जो ज्यूरिख में जो मीटिंग्स हैं, ये पिछले संडे, और बड़ी ब्लेसिंग बहुत लोगों के लिए वो मीटिंग ज्यूरिख की बन गई, और खुदावन का बड़ा शुक्र हो। और परमेश्वर के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे कि वो खुदा के कलाम को सुन सकें, वचन को सुन सकें और तैयारी कर सके अपने लिए उस महिमामयी दिन को देखने के लिए। हम सब बड़े इंतजार में हैं, और इसके बाद हम उन सभी वर्षों को, उन सभी सालों को, उस वक्त को देख रहे हैं जो पीछे गुजरा। मैं हर चीज की डिटेल में नहीं जा रहा, पर 70 साल हो चुके हैं इस बात को कि मैं कलाम का प्रचार कर रहा हूं, वचन को प्रचार कर रहा हूं, اور 60 سال ہو چکے جبکہ میری بلاحٹ بھی آئی 60 سال پہلے جب مجھے بلاحٹ آئی خداوند کی طرف سے. اور آپ سب جانتے ہیں جب آپ 79 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تب آپ 90 کے آس پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس پرکار سے جس پرکار سے خداوند نے ایسا ہونے دیا, بھائی برنم نے بتایا تھا کہ 1963 میں کہ انہوں نے خداوند کی سیوا کری 33 سال تک 33 سال تک. اور میں اب واپس مڑ کے دیکھتا ہوں اور میں نے 60 سال خداوند کی خدمت میں بتائے ہیں اور ڈائریکٹلی میں نے خداوند کے وچن کا پرچار کیا ہے. اور سبھی دنیا کے لوگوں میں نے یہ پرچار کیا, اور یہ قریب 170 دیش بنتے ہیں جن میں کہ میں نے جا کے پرچار کیا ہے, اور بہت سارے اور بھی بھائی جو آس پاس کے دیشوں میں رہتے ہیں اور آج بھی رہ رہے ہیں وہاں پر بھی پرچار ہوا ہے. ہم کتنے آبھاری ہیں, کتنے شکر گزار ہیں اس بات کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی اور بہنوں, اس بائبل میں بہت ساری جو ضروری باتیں ہیں, جو بہت ساری ضروری باتیں بتائی گئی ہیں, وہ تو پہلا درجہ تھا, وہ پہلی شکشا تھی جو رسولوں کے سمے میں پریرتوں کے سمے میں ملی, جبکہ ہمارے پربھو کے جنم سے لے کر اور اس کی جو سیوت اور جو یوحنا بپتسمہ دینا والے کی جو خدمت تھی اور اس کے بعد پوتر آتما کا دیا جانا اور اس کے بعد ان خطوں کا دیا جانا, ان پتریوں کا دیا جانا جو پریرتوں نے رسولوں نے لکھے, ہم نئے نیم میں ان ساری چیزوں کو پاتے ہیں. اور پہلی جو ونشاولی تھی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اس کے ہم دیکھتے ہیں ایک وہ سمے آتا ہے جبکہ آخری ونش آتا ہے, آخری سمے کے لوگ آتے ہیں. اور جو اس بیچ میں ہوا اور وہ بھی ہمارے کو بتایا گیا, ہم پر پرکاشت کیا گیا, نازل کیا گیا, جیسا کہ بھائی برنم نے بتایا, اور ان کو بلایا گیا تھا آتمک روپ سے اس کے بارے میں بتانے کے لیے, اور انہوں نے 4 ان گھڑ سواروں کے بارے میں بتایا اور مخالف مسیح یعنی کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بتایا, اور وہ جو سمے تھا اس سمے کے بارے میں. ہم اس کے بارے میں ابھی وستار میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, جو پہلا سمے تھا اور جو آخری سمے ہے, یہ بہت بہت صاف طریقے سے ہمارے سامنے اس کا ورنن کیا گیا, اس کو بتایا گیا, اور ہم کہہ سکتے ہیں بار بار اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے جو اس وقت کے لیے دیا گیا ہے, اور ہم اس کے لیے خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں, پربھو کے بڑے دھنیوادی ہیں. اور ہم کئی بار اس بار کو کہہ چکے ہیں کہ جو متی 24 میں کہا گیا, پہلے پربھو کہ اس مندر کے بارے میں تھے, ہیکل کے بارے میں کیا ہوگا, پھر وہ یروشلم میں کیا ہوگا, پھر اسرائیل کے لوگوں پر کیا ہوگا, ان ساری باتوں کو بتایا. پھر وہ اس کے بعد وہ اس پوائنٹ پہ آتا, اس نقطے پر آتا ہے کہ آخریت میں کیا ہوگا, انت سمے میں کیا ہوگا. اور یہ سسماچار جو ہے, یہ جو آتمک وچن ہے, یہ جو ہے یہ سارے سنسار کے دیشوں میں پرچار کیا جائے گا اور اس کے بعد انت آ جائے گا, خاتمہ آ جائے گا. اور اب ہم اس سمے میں گزر رہے ہیں تو ہم اس چیزوں کا انوبھو کر پا رہے ہیں کہ پترس اور پولوس بھی اس سمے کے بارے میں باتیں کیا, انہوں نے کہا, ورنن کیا, اور اب ہم خداوند کے اس کلام کو ڈائریکٹلی डायरेक्टली इस वक्त के कलाम को अनुभव कर सकते हैं। और ये वादे जो हमारे के लिए किए गए, जो खुदावन ने बताया कि मैं एक नबी को भेजूंगा, भविष्यवक्ता को भेजूंगा उस महान दिन के आने, भयंकर दिन के आने के पहले, ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है। और परमेश्वर का पवित्र वचन, पाक कलाम हमारे पास है, और हम उस ईमान के लिए यत्न कर रहे हैं जो कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंप दिया गया था। और ये वो वचन है, ये वो विश्वास है जो खुदावन, सच्चे खुदावन का सच्चा विश्वास है। जब खुदावन ने इज़राइल से बात करी, जब उसने उसको वो आज्ञाएं दी, जब उसने कहा कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारा खुदा हूं, मेरे अलावा तुम्हारे लिए और कोई भी खुदा ना हो, खुदा तो एक है, और उस एक खुदा में, उसी एक खुदा ने जिसने हमको पिता के रूप में स्वर्ग में बताया और पुत्र के रूप में धरती पर बताया और कलीसिया में पवित्र आत्मा के रूप में बताया, और अब हम कुछ ऐसे वचन पढ़ेंगे और देखेंगे जो बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से सुने इस वचन को, बड़े ध्यान से सुने, जैसा कि प्रभु हम सब से डायरेक्टली पर पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा। सुनिए, हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 और उसकी 36, इब्रानियों 10 और 36। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उस प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग धीरज नहीं रखते और उतावले हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कब तक होगा ये सब, और सोचना शुरू करते हैं, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में, जैसे कि इतिहासकारों के हिसाब से उसको करीब 6 महीने, उसको 6 महीने प्रीचिंग का समय दिया गया, और उसके बाद हमारे प्रभु को करीब करीब 2 साल का वो खास समय दिया गया। कुछ कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 3 साल, पर अगर हम वचन को पढ़ें तो हमको ये पता चलता है हमारे प्रभु के लिए प्रचार करने का समय बहुत थोड़ा सा था जिसमें उसने के इस कलाम को हमारे सामने रखा और अपने अपनी सेविकाई को और खिदमत को उसने अंजाम दिया, पूरा किया। और 1933 से जब भाई ब्रहनम को ये बुलाहट आई कि इस कलाम को, इस वचन को हमारे सामने लाएं, कि और ये बताया गया कि ये जो मैसेज, ये संदेश है, खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा, और इतने साल जो बीच में से गुजरे हैं, पर हम ये जानते हैं कि खुदावन का कलाम क्या कहता है, कि खुदावन ढीला नहीं है, खुदावन जो है सुस्त नहीं है, ढीला नहीं है, वो अपने वादों को पूरे करने में ढीला नहीं है, वो नहीं चाहता कि कुछ लोग खो जाएं, और जिनको कि खुदावन की दुल्हन की कलीसिया में होना है वो खो जाएं, वो ना बचाए जाएं, इसलिए खुदावन धीरज रखता है जब तक कि आखिरी वाले को ना बुला लिया जाए, और उसके बाद वो तुरही फूंकी जाएगी और तब वो आवाज, जोर की आवाज दी जाएगी, और कुछ मुकर्रर फरिश्ते की आवाज, प्रधान दूत की आवाज बोली जाएगी, जैसा कि हमको कलाम में बताया गया, 1 थिस्सलुनीकियों 4 में बताया गया। पर हम खुदावन का शुक्र करते रहें, धन्यवाद करते रहें कि ये समय खिंचता जा रहा है और प्रभु इसमें थोड़ी देरी कर रहा है, जिससे कि प्रभु सारी देशों से, सारी भाषाओं से, सारी जगहों से अपने लोगों को निकाल लाए। और देखिए आगे पढ़ते हैं इब्रानियों 10 और उसकी 37 आयत, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अब हम तो इस आयत के लिए साफ तरीके से आमीन ही कह सकते हैं। मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्या ऐसे अल्फाज जो आज बताए जाने चाहिए, प्रचार किए जाने चाहिए, कि ये तो 2000 साल पहले लिख दिए गए थे। देखिए नोट करिए कि कितने धीरज की जरूरत है, कितने धीरज रखने की जरूरत है कि ये तो तभी लिख दिए गए थे और कितना समय गिर गया। और वो जो आएगा वो तो आएगा ही, ये वादा टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं इस पे बड़े जोर देर कर कहना चाहता हूं इस प्रकार से कि हम सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में और सारी भाषाओं में इस बात को ईमान रख लें, इस पर विश्वास कर लें कि ये जो पुराना जो समय था, जो शुरू में जो प्रभु की पहली आमद पे था, और ये जो समय है और प्रभु की जो दूसरी आने का आमद का जो समय है, इन दोनों के बारे में बड़े खास तौर पे इस कलाम की किताब में लिखा गया है, बाइबल में। हमको बिल्कुल साफ 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 दिशा दिखा दी गई है और यहां पर ये लिखा है, हमारे पास वो सारे खत हैं जो प्रेरितों ने, रसूलों ने लिखे मिनिस्ट्रीज के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, और क्या क्या होगा, और कलीसिया में क्या क्या होगा, और कलीसिया में क्या क्या होने वाला है, इन सब के बारे में, और इन 2000 सालों में क्या क्या गुजरने वाला है, इसके बारे में लिखा। पर आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, वो इस बात पे जोर देना है कि हर चीज जो है, जो इस वक्त हो रही है, वो यहाँ पर लिखी गई है। और जब हमारे को ऐसी दिशा मिलती है जो कि खुदावन की तरफ से होती है, तो एक कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, देखिए एक थोड़े समय के लिए, और उसके बाद जो आएगा वो तो जो आने वाला है वो तो आएगा ही। ये जरूरी चीज क्या है कि हम रोज बरोज प्रतिदिन तैयार रहें। यहां देखिए आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 और उसकी 38 आयत, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यहां लिखा है, यहां इस कलाम में लिखा है, इस पे जोर देने की जरूरत है कि हम ऐसा ना हो कि हम अधर्मी हो जाएं और हमारा विश्वास पीछे हट जाए, पर हम उस विश्वास को थामे रहें पूरी इच्छा से, जिससे कि हमारा प्रभु अपने वादे को, जो उसने हमारे जीवनों के लिए किया है, वो करेगा, और जैसा उसने वादा किया है वो आएगा, और कोई भी लज्जित ना होगा, शर्मसार ना होगा हमारे विश्वास के कम हो जाने से, पर वो धीरज धरे रहेगा उस विश्वास में जो कि एक बार पवित्र लोगों को, पवित्र जनों को दे दिया गया, सौंप दिया गया। और इस सब खास तौर पर इस ईमान में जो हमको विश्वास जो खुदा ने दिया है, और हम इसमें जुड़े रहें जब तक के हम विश्वास के करते करते देखना ना शुरू कर दें, जब तक के हमें दिखना ना शुरू हो जाए जो विश्वास हम आज कर रहे हैं, तब तक इसे थामे रहें, उस असली विश्वास को हम थापे रहें। और जो ये जो तीन तरीके के विश्वासी होते हैं, पूरे विश्वासी, अधूरे विश्वासी और अविश्वासी, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें उनसे कुछ लेने ना जो अविश्वासी हैं और परमेश्वर को नहीं मानते। पर जो 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 बनावटी विश्वासी हैं, बनावटी नकली ईमानदार दिखते हैं, उनसे भी हमें कुछ नहीं लेना, हमें उन कलीसियाओं से कुछ नहीं लेना, हमें उन धर्मों से कुछ नहीं लेना, हमें तो सिर्फ खुदा का ये कलाम, जो ये जो कलाम है, खालिस कलाम है, हमें इसमें जो ईमान दिया, अब्राहम की तरह हम खुदावंद पर, हम खुदा पर भरोसा रखें, जैसा कि खुदा ने हमें कहा। और हम ये कहना चाहते हैं, बार बार मैं सैकड़ों बार ये दोहराना चाहता हूं कि जो असली विश्वास वो जो है, वो तो खुदा के कलाम में वो जड़ा हुआ है, उसकी जड़ें जो हैं वो खुदा के कलाम में हैं। और एक बारी वो पाक लोगों को सौंप दिया गया, और हमारे वक्त में भी, हमारे समय में भी ऐसा हुआ, और हम इसमें बने रहते हैं, हम इसमें गड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी और पहला बाब और उसकी सातवीं आयत, दूसरा तिमोथी एक सात। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ की, कुव्वत की और प्रेम और संयम यानी धीरज की आत्मा दी है। यहाँ देखिए, हमारे परिवारों में, हमारी शादियों में, हमारे नौजवानों में, या कहीं, या कोई बीमारी है, या पर परीक्षाएं हैं, ये सब जगह मौजूद है। पर देखिए, मेहरबानी से ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले धीरज से उस विश्वास को थामे रहें, उसे पकड़े रहें, उसे छोड़े नहीं, उन वादों को थामे रहें जो खुदा ने हमारे लिए इस वक्त के लिए किए हुए हैं, दिए हुए हैं, कि हमारे ऊपर डर की रूह ना आ जाए और ये डर हमारे ऊपर ना आ जाए जिससे कि हम इससे पीछे हट जाएं। पर खुदावन की जो रूह है, जो कुव्वत देती है, जो सामर्थ्य देती है, जो ताकत देती है और संयम देती है कि हम अपने आप में कैसे काबू रखें, वो हमको, हम उसको थामे रहें। इन सारी बातों में, जब इन परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं तो गिर ना जाएं, पर खुदा पर भरोसा रखें, जैसे कि अय्यूब ने, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो खुदा पर भरोसा रखता रहा और उसने कहा, और उसको ने कहा कि मेरा बचाने वाला जिंदा है और मेरी आंखें उसको जरूर से जरूर देखेंगी। और तब वो समय आया, तब वो आ गया कि उसको दुगने में, उसको दो गुनी वापसी और बहाली मिल गई। जब हम दुख तकलीफ में भी होते हैं, तब हमको नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे, हम क्या करें। हम ईमान से ये बात कहें, मैं जानता हूं कि मेरा जलाने वाला जिंदा है, मेरा उद्धार करता जिंदा है, और वो अपने वादा को मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में हकीकी तौर पर पूरा करेगा, क्योंकि मैं फर्जंद हूं उस वादे का जो खुदा ने दिया है। और हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं, उसका बड़े शुक्रगुजार करते हैं। अपने दिल से इस बात को लगा लें और डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस वादे को थामे रहें, जो कि वो ईमान को थामे रहें, जो कि एक ही बार में पाक लोगों को, पवित्र लोगों को, यानी कि आपको और मुझे और सबको दे दिया गया, सौंप दिया गया। खुदा का बड़ा शुक्र है, ये हमारे, वही हमको सामर्थ देगा, वही हमें कुव्वत देता है। अब हम देखते हैं यूहन्ना 7 और उसकी 38 और 39, यूहन्ना 7 38 और 39, यूहन्ना 7 38 اور 39 آیت. یونا 7:38 یہاں لکھا ہے, کیونکہ جو مجھ پر وشواس کرے گا جیسا پوتر شاستر میں آیا, اس کے ہردے میں سے جیون کی ندیاں بہ نکلیں گی, کیونکہ اس نے وچن پوتر آتما کے لیے کہا جسے اس پر وشواس کرنے والے پانے والے تھے, کیونکہ آتما اب تک نہ اترا تھا کیونکہ یسو اب تک اپنی مہیما کو نہ پہنچا تھا. یہاں دیکھیے وہاں لکھا ہے کہ وہ جیون کی ندیاں بہ نکلیں گی, اور جب پوتر آتما انڈیلا گیا, جب کلیسیا پر انڈیل دیا گیا, تب یہ ندیاں بہ نکلی. اور یہ تب ہوا جب پینتیکوس کے دن اور یہ وہ جیوتے یعنی زندہ کلام کی جو ندیاں تھیں وہاں سے بہنے, اور نو وردان اور نو گفٹس وہاں سے, اور نو پھل تھے جو پوتر آتما کے پھل تھے, اور بہت ساری سیوکائیاں اور بہت سارے وردان کلیسیا کے اندر پرگٹ ہو گئے. وہ سارے کے سارے وعدے جو پربھو نے کیے تھے جب وہ زمین پر تھا, جو اس نے وعدے کیے تھے, وہ سارے کے سارے اس وقت پر پورے ہو گئے, اور وہ آج بھی پورے ہو رہے ہیں, آج بھی ظہور میں آ رہے ہیں. آگے ہم پڑھتے ہیں, ہم اعمال کی کتاب پریرتوں کے کام اور اس کی 33 آیت کو پڑھتے ہیں. اعمال 2:33, پریرتوں کے کام 2:33, 2:33. میں لکھا ہے, اس پرکار پرمیشور کے دائنے ہاتھ سے سروج پد پا کر پتا سے وہ پوتر آتما پراپت کر کے جس کی پرتیجیا کی گئی تھی اس نے یہ انڈیل دیا, اور تم دیکھتے ہو اور سنتے بھی ہو. اگین ہم اس بات کے لیے دوبارہ آمین کہتے ہیں, اور بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پوتر آتما کے بپتسمے کو آج انوبھو کر سکتے ہیں, کہ اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب پہلی اور آخری بارش دوبارہ سے آئے گی. میرے بھائی اور بہنوں, میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ یہاں لکھا گیا ہے, کیونکہ یہ وعدہ آپ سب کے لیے ہے, ہم سب کے لیے, اور ہمارے بچوں کے لیے, اور ان سب کے لیے جن کو پربھو اپنے پاس بلائے گا. ہم سب کو نجات کے تجربے ہونے آج بھی ضروری ہیں, اور ہمارا بدلاؤ, ہمارا نیا جیون, ہماری نئی پیدائش اور نیا پن, نئی زندگی پہ ملنا, یہ بائبل کے سارے انوبھو جو ہیں ہمارے جیون میں آج بھی ہونے چاہیے, یہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں. اور جب خداوند جب اپنے کام کو کامل کرے گا, ہم اس کے لیے آلریڈی آج ہی اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جیوتے جیون, اس جیون کی وہ ندیاں کلیسیا کے اندر میں بہتی ہیں, وہ خداوند کا جو سچا کی جو سچی کلیسیا اس میں رہتی ہیں. ہم مرے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو زندہ ہیں, ہم زندہ کلیسیا ہیں, خداوند کی زندہ کلیسیا ہیں, کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے, جس میں کہ ہمارا خداوند اپنے کام کو نرنتر لاگو رکھتا ہے اور نرنتر جاری رکھتا ہے. اور اس لیے میں ایک بار پھر بھائی برادر برینم کے بارے میں بتانا چاہوں گا, ہم نے اس بات کو دیکھا ہے, اس بات کا انوبھو کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ کل آج اور وہ آج بھی ویسے ہی ہے, وہ ڈیلیورر ہے, ہمارا نجات دہندہ ہے, ہمارا پربھو ہے, وہ تو سب ہے, ہمارے لیے سب کچھ ہے, جیسے وہ ہمیشہ سے تھا ویسے ہی آج بھی ہے. اور بھائی برینم کی خدمت کے دوارا ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی بحالی کلیسیا کے اندر کر دی گئی ہے, اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری منسٹریز اور سیوائیں جو ہیں, یہ ظہور میں آنی چاہیے, انوبھو میں آنی چاہیے, اور ہمیں گھٹنوں پہ جا کے یہ پرارتھنا کرنی چاہیے کہ خداوند اپنے لوگوں کے پاس آ جاوے اور خداوند سے ہماری ملاقات ہو جاوے. اگر آج میں اس کی تلنا کروں, یہ ایک اس لیے نہیں کہ میں بھائی برینم کے اوپر زور دے رہا ہوں, پر میں تو خداوند کے اوپر زور دے رہا ہوں, جو کہ خود بھائی برینم جو تھے وہ ایلیا کی طرح ایک منش تھے جیسے میں اور آپ ایک انسان ہیں, اور وہ شادی شدہ تھے اور وہ ویسے ہی انہوں نے اپنا جیون بتایا جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں جو کار بھی چلاتے تھے, اور وہ ایک منش تھے جیسے ہم سبھی کی طرح وہ ایک انسان تھے, پر ان کو خداوند کی طرف سے آتمک روحانی طور پہ بلاہٹ دی گئی تھی. حالانکہ وہ انسان تو تھے پر آتمک طور پہ ان کو جو بلاہٹ دی گئی تھی اس سے فرق آیا, اور جیسے کہ وہ ہم سب کی طرح جو خدا کی کالنگ ہے وہ فرق دیتی ہے, وہ ڈفرینس دیتی ہے, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں, اور جس کو خدا استعمال کرے اس کے لیے خدا کا شکر ہوتا ہے. اور یہ خدا جب ان کو بھیجتا, میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے خاص طور پہ, یہاں پر یہ وہ تصویر ہے, ایک باری پھر یہ تصویر دیکھیے یہ سپر نیچرل لائٹ ہے, یہاں پر یہ ایمبر لائٹ ہے جو کہ بھائی برنم کے اوپر دکھائی دے رہی ہے. میرے بھائی اور بہنوں, جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ خدا نے موقع دیا کہ میں اس وقت بھائی برنم کی میٹنگ میں میں موجود رہا, جرمنی میں, ٹیکساس میں, جیفرسن ویل میں, اور کئی جگہوں پر. یہ جو سپر نیچرل لائٹ تھی, الوکک لائٹ جو تھی, پرکاش جو تھا, جب انہوں نے بیماروں کے لیے دعا کرنی شروع کری تو یہ ان پر نازل ہوئی. تب یہ الوکک, تب ان کی جو سیوا تھی, جو الوکک سیوا تھی, روحانی سیوا تھی, خدمت تھی, یہ تب جب خداوند کی حضوری وہاں پر تھی, اس پلیٹ فارم پر تھی, ان میٹنگز میں تھی, تب یہ جو تھے غیر ممکن کام جو تھے, یہ کام جو تھے یہ ہونے شروع ہوئے. یہ وہ بھائی برنم اکیلے وہاں نہیں تھے, پر جب جس وقت وہاں پر خدا کی جو غیر جو سپر نیچرل پریزنس تھی, خداون کی جب وہ پریزنٹ ہوتی تھی, تب اس سمے وہ جو نبوت کی باتیں دکھائی دیتی تھیں, وہ سامرتھ کے کام, وہ قوت کے کام دکھائی دیتے تھے, جیسا کہ پربھو کے بارے میں ہوا تھا. اور مجھے پھر دوبارہ بتا رہا ہوں, میں شاید یہ پورا فٹ نہ بیٹھے, پر آپ جانتے ہو, میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی برینم نے, انہوں نے 1100 یعنی 1100 سرمن پرچار کیے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس میں بہت ساری غیر ممکن باتیں ہوئیں, الوکک باتیں ہوئیں, سپر نیچرل باتیں ہوئیں, ہر ایک سرمن میں ایسا ہوا. پر میں بتاتا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ مان لو 1100 میں سے 500 میں ویسے یہ باتیں ہوئیں, ظہور میں آئیں, ایسا ہم مان لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ جو اس پریئر لائن میں کھڑے ہوتے تھے, اس قطار میں کھڑے ہوتے تھے, وہ ان کو بتا سکتے تھے کہ وہ کس بیماری سے پیڑت ہیں, کس بیماری میں مبتلا ہیں, اور اس بیماری کا نام کیا ہے, اور ان کا نام کیا ہے, اور وہ کہاں سے آئے. یہ ساری باتیں جیسے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سیوکائی میں ہوا, بالکل ویسے ہی ہوا. ہم اس بات کو مان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ کیول کہ 10 باری, یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ مان لو ہر میٹنگ میں 10 باری, یہ مان کے چلتے ہیں ایسا ہوا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم 500 کو 10 سے ضرب کریں گے تو 5000 باری کچھ ایسی سپر نیچرل باتیں ہوئیں, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سے بھی اور زیادہ میٹنگز میں ایسا انوبھو ظہور میں آیا, کیونکہ انہوں نے تو 5 یا 10 سے زیادہ لوگوں کے لیے, ایک ایک میٹنگ میں 15 سے 20 لوگوں کے لیے بھی دعا کری. تو یہ گنتی تو اور بڑھ سکتی ہے, یہ تو میں اندازے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ خدا نے ہمارے کو کسی किसी किसी जवाब के लिए नहीं नहीं टिका दिया कि हम जवाब मांगते रहें। हमारे वक्त में जैसा उसने उसने अपने हमारे खुदावन के बारे में के जमाना में जैसे उसने किया, वैसा ही उसने तब जैसा उसने तब किया वैसे ही उसने हमारे जमाने में किया। इसलिए हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि सिर्फ ये नहीं कि एक इंसान आ गया और स्टेज पे खड़ा होकर प्रचार करने लगा, जैसे कि और बड़े 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 जो प्रोस्पेरिटी इवेंजलिस्ट जो आज प्रचार करते हैं उनकी तरह नहीं, जो आगे पीछे प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर चलते और दौड़ते हैं और वो सोचते हैं कि अपने बारे में वो बड़ी अकर रखते हैं और बड़ा घमंड रखते हैं, ऐसा नहीं। और वो मिरेकल्स के बारे में और साइंस के बारे में बातें करते हैं। यहाँ एक मनुष्य था जो खुदावन ने खुद भेजा, जो खुदा ने भेजा, और वो हमारे सामने उस अलौकिक बात को बताता रहा। मेरे भाई और बहनों, हम इस बात को समझते हैं, हम जानते हैं, हम खुदा के वादों को जानते हैं। हम तो उस आखिरी जमाना में आखिरी वक्त में पहुंच चुके हैं कि यह क्या हमारे वक्त में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये हम जान गए हैं। और जिन्होंने इस बात को यकीन जान लिया है, और ये वो ईमान है, ये वो विश्वास है, जैसा हमने पढ़ा कि एक बार वो पाक तरीन लोगों को सौंप दिया गया। मैं जजमेंट नहीं कर रहा, किसी का न्याय नहीं कर रहा, पर अगर आप विश्वास में ये कह पाए कि यूहन्ना 17:17 हमारे मेरे साथ पूरी हुई, जब हमारे खुदावंद ने कहा कि मैं उनकी खातिर अपने आप को पवित्र करता हूँ, पाप करता हूँ, क्योंकि वो भी इसी तरीके से पवित्र किए जाएं, क्योंकि अगर आपने नई जिंदगी को और इस पाक तरीशन को, इस सेंक्टिफिकेशन को और खुदावन के कलाम से अगर आपने अपने आप को पाक तरीन नहीं किया, और आपको ये कहना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने मुझे पाक किया, मुझे पवित्र किया अपने वचन से, अपने कलाम से, और तभी जो उद्धार पाए लोग हैं, जो इलेक्ट हैं, जो चुने हुए लोग हैं, तभी उनको यह हक हासिल होगा कि वो खुदावन के उन सारी बातों को जो खुदा ने नियुक्त करी हैं, मुकर्रर करी हैं, उन पर ईमान ला सके। और मेरे भाइयों बहनों, आप सब उनमें से हैं। खुदावन के नाम को महिमा मिले, खुदावन के नाम को महिमा मिले, आमीन। आगे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसकी 5:4, पहला यूहन्ना 5:4, पहला यूहन्ना 5:4, पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब देखिए, जो चुने हुए हैं उनके लिए ये बात लिखी गई है, जो कि अपने दिल से अपने मन से इस बात पर ईमान रखते हैं। इसलिए हम जोर देकर इस बात की इस आयत के ऊपर कहते हैं, बार बार कहते हैं, हम किसी और विश्वास के पीछे नहीं खड़े, बस हम तो उस विश्वास के लिए जो एक बारी पवित्र लोगों को सौंप दिया गया खुदावंत की तरफ से, और जो कि चुने हुए लोग हैं, उसके प्रिय लोग हैं, उसके बिलवेड लोग हैं, उनको जो के दुनिया बनाने से पहले ही उसकी नॉलेज में थे और उन्होंने उसको उसने उनको चुन लिया। इसलिए हम इस विश्वास पे अपने विश्वास से इस बात को अनुभव कर लें कि खुदावन हमारी जिंदगी में वो सारी बातें पूरी करेगा। आगे पढ़ते हैं, अब रोमियो 10:17 पढ़ते हैं, रोमियो 10:17 में लिखा है, क्योंकि विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास जो है खुदावंत के इस बहुमूल्य वचन को सुनने से पैदा होता है। हमें इस पर जोर देकर कहना होता है, इस सच्ची हकीकत पर कहना होता है कि ये जो कलाम है, ये जो मैसेज है, ये जो कलाम है, ये कलाम ही, ये जो वचन है, ये मैसेज है, ये ही खुदावंत की दूसरी आमद की तैयारी बख्श रहा है। और ये मैसेज क्या है? ये सारा का सारा उद्धार की योजना है, उद्धार की वो कामिल योजना है, फुल मैसेज है, ये फुल प्लान है सल्वेशन का हमारे लिए। और हर एक वरदान, हर एक आशीष जो खुदावन ने हमारे लिए दी हुई है, उसने खुदावन यीशु मसीह में हमको ये सारी आशीषें दे दी हैं। इससे पहले बहुत सारे वादे थे, पर वो जो वादे थे वो वादे सच्चाई और हकीकत कब बन गए? खुदावन यीशु मसीह के थ्रू। तब वो, जब हमको वो सारी चीजें क्यों नहीं देगा, क्यों कर नहीं देगा जो कि उसने वादा किया, वो क्यों कर नहीं देगा? उसने हमें दिया, और उसने अपने अनुग्रह से, अपने फजल से, और पूरे उद्धार की योजना के सामर्थ के साथ उसने अपने उस बेशकीमत खून के द्वारा हमारे लिए वो काम कर दिया, और वो नया अहदनामा हमको दे दिया, हमारे लिए वो नया अहद दे दिया, और हम खुदावन के वंश के लोग बन गए, और हम उस, और प्रभु यीशु मसीह के साथ, खुदावन के साथ हम भी उसके वंश में शामिल हो गए। हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया। हम जानते, अब आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं रोमियो 10 और उसकी 15 आयत। रोमियो 10 15 को पढ़ते हैं, और यदि वो भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करेंगे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। देखिए, इसको हम जोर देकर दोबारा कह रहे हैं, अगर खुदा खुदा ने एक भेजने वाले को, नबी को ना नियुक्त किया होता, ना बुलाया होता, जो कि उसने वचन दिया था, तो खुदा ने जो इस समय के लिए दिया था, तो वो हमें कैसे मिलता? हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, इसके अंदर हम कोई व्यक्तिगत नहीं जा रहे, किसी के लिए पर्सनली जा रहे। क्या सारे डिनोमिनेशंस ने, क्या सारी चर्चेस ने, क्या सारे इवेंजलिस्ट ने इस बात का प्रचार किया कि ये जो मैसेज है इस समय का वो क्या है? नहीं, हरगिज नहीं। उन्होंने तो अपनी अपनी शिक्षाएं, अपनी अपनी तालीमों का प्रचार किया, उनको बताया, उनको सिखाया, और उन्होंने जो अपनी अपनी शिक्षा की किताबों में उन्होंने लिख दिया, वही वो प्रचार कर रहे हैं। इससे नाराज ना हो ये सुनकर, पर जितने बैप्टिस्ट के प्रचारक हैं वो वही बात प्रचार करें, वो तो उनको वही प्रचार करना होगा जो उनकी किताबों में लिखा है, और जो मेथोडिस्ट वाले हैं और लूथरन वही प्रचार करेंगे जो उनकी किताबों में लिखा है, जो उनकी शिक्षाएं उनको दी गई हैं, जो उनके नोट्स दिए गए हैं। पर जो सच्चा विश्वास है, जो सच्चा विश्वास है, जो सच्चा ईमान है, जो कि पाक तरीन लोगों को सौंप दिया गया, वो खुद का बनाया हुआ नहीं था, वो सेल्फ मेड नहीं था जो उनको दिया गया, बल्कि वो सच्चा ईमान, वो सच्चा विश्वास जो कि पाक तरीन लोगों को खुदावन ने बख्शा और दिया और सौंप दिया, वो तो एक ही बार दे दिया गया, और खुदा के कलाम के प्रचार से वो दिया गया। इससे पहले हमको इस चीज का यकीन ही नहीं होता था, पर तब जब खुदावन ने इस वक्त के लिए जो हमारे समय में जो प्रचार किया गया, जब हमने उस पर बिलीव किया, तब हमें उन वादों के बारे में पता लगा कि नबी भेजा गया और सिखाने वाला भेजा गया, और तब हमें समझ में आया, और ये पाक रू ने कराया, और पाक रू ने उस भेजे हुए के संदेश को पाक रू ने हम तक भेजा और हमको समझाया। पर अगर कोई भेजा ना जाता तो हम कैसे उस संदेश को पाते? और जब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, जब हम पढ़ते हैं कि वो खुदावन की तरफ से भेजा हुआ था, और भाई ब्रैनम भी प्रभु परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से भेजा हुआ था, और वो खुदावन के आने की दूसरी आमद के पहले उसका आना जरूरी था। हमने खुदावन के फजल को हासिल किया इस वक्त में, और हमने इस बात को समझ लिया, इन बातों को मान लिया जो कि हमारे लिए दिए गए इस वक्त के लिए, और हमने और हमने उसको मान लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको समझ लिया, और जो 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 खुदावन के नबियों को, उसके भेजे हुओं को जानते और मानते हैं और ये उन पर यकीन करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, वो ही उन वादों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस वक्त के वादे हमारे वक्त के लिए दिए गए। आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब यूहन्ना 8 को पढ़ते हैं, उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना 8 और 29, यूहन्ना 8 29, यूहन्ना 8 29, यूहन्ना 8 29, यूहन्ना 8 29। आप यहां देखिए कि हमारा खुदावन भी, हमारा नजात दहिंदा, उसने भी ये बात कही कि जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं तो वही करता हूं जो कि जिससे वो खुश होता है, वो मेरे साथ है। हमारे खुदावन ने फरमाया, केवल वो लोग, सिर्फ वो लोग जो खुदावन को जिन्होंने रिसीव किया, उन्होंने उन बातों, उस नजात को हासिल किया, उस नजात का अनुभव किया जो कि उस वक्त खुदावन की मिनिस्ट्री से मिल रही थी, और बाकी लोग जो थे वो उसको नहीं पा सके। और हमारा खुदावन रोया और बात बात कहता रहा, ए यरूशलेम, अगर तूने अपने समय को जान लिया होता तो तुझे शांति मिलती। इसके बारे में सोचें कि वो जो टोरा था, जो खुदा का कलाम था, और जो ओल्ड टेस्टमेंट जो खुदा ने दिया था, वो ये बताता है। और वो जो फरीसी लोग थे, वो उन्होंने खुदा के कलाम को वैसे नहीं जाना, वैसे नहीं विश्वास किया जैसा कि वो कहता था। वहां पर तो सारी गलत गलत शिक्षाएं थी, अलग अलग किताबें उनके पास थी, पर खुदा का जो ये खालिस कलाम है, उन्होंने ये तोरा तो पढ़ा, उन्होंने इस भजन संहिता को तो पढ़ा, जबूर को तो पढ़ा, पर उन्होंने उसका अपने हिसाब से मतलब निकाला, उन्होंने अपने हिसाब से उसका अमल किया। हमें सारे लोग बाइबल से ही पढ़ते हैं, बाइबल से ही प्रचार करते हैं, जो इनकी अपनी शिक्षाएं हैं वो भी पहले इसी बाइबल से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, पर अपनी अपनी जो कैथोलिक प्रीस्ट जब प्रचार करता है, जब वो पानी छिड़कता है छोटे बच्चों के माथे पर, तो वो खुदावंद की बातों को यहां से पढ़ के बताता है कि हमें दोबारा से हमें पानी और आत्मा से जन्म लेना है, पर वो यहां पर है, वो खुदावंद के कलाम में से ही पढ़ के बताता है और वहां छींटे मारता है, स्प्रिंकल करता है, और फिर कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बाप बेटे और रूल कुदूस के नाम में उसको बपतिस्मा देता है और पानी छिड़कता है। देखिए, अब उसको कह देता है अब तुम्हारा नया जन्म हो गया, अब तुम पानी और आत्मा से पैदा हो चुके हैं। सारे खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं और अपनी अपनी शिक्षाएं प्रचार करते हैं, देखिए, और लोगों को गलत रास्ते पर डाल देते हैं, विचलित कर देते हैं, और कई इस बात पर गुस्सा आता है जब आप देखते हैं कि खुदावन को, उन्होंने खुदावन के कलाम को कैसे घुमा देते हैं, कैसे उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं और खुदावन हमें ऐसा फजल दे कि और सारे लोग उनके बीच में से निकाले जाएं और बाहर आ जाएं, और खुदावन का जो खालिस कलाम और जो तालीम है ये वापस बहाल कर दी जाए, वो सारी गलत शिक्षाएं, चाहे वो गॉड हेड की हों, चाहे पानी के बपतिस्मे की हों, चाहे ईमान की हों, चाहे बदलाव की हों और नई जीवन की हों और होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में, ये सारी की सारी बाइबल की शिक्षाएं जो हैं, ये सारी चीजों का बहाल होना जरूरी हो गया हमारे, और वो वापस इस कलाम से हमको सिखा दी गई, हमको वापस इस हालत में ले आया गया जैसे कि हम शुरुआत में थे, जैसे कलीसिया शुरुआत में थी, और केवल चुने हुए लोग जो इलेक्ट हैं वो ही उस गड़बड़ी में से बाहर निकल के आएंगे, वो खुद की बनी बनाई शिक्षाओं में से तब निकल के आएंगे, वो वही लोग होंगे जो पहले से चुने हुए हैं। अब आप पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20वां बाब और 21 आयत, John 20:20-21. खुदावन ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखिए एक बारी फिर इस आयत पर हम आमीन कहते हैं। हमारे खुदावंद ने उन सब को बुलाया और भेजा जिसको उसने चुना, जिससे कि वो उसके कलाम का प्रचार कर सके, और वो जो उद्धार का सबक था, मैसेज था, वो उसने दिया। जैसा, और वो कह रहा है, जैसा पिता ने, जैसा बाप ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये उसने अपने चेलों को कहा। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत ही अहम बात है मेरे भाई और बहनों। पौलुस भी ये कह सकता था कि कब उसको बुलाया गया, कहां पर उसको बुलाया गया, उसे क्या कहा गया, उसकी बुलाहट में क्या था, उसकी बुलाहट क्या थी। और अगर आप पढ़ते हैं, और अगर आप एमाल और उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं, तो आप पता लगा लेंगे कि वहां पर क्या क्या कहा गया, कि खुदावंद ने उसको, खुदावंद उसके सामने हाजिर हुआ और उसने उसे गैर कौमों के पास भेजा गया, और जिससे कि उनकी आंखें खोली जाएं, और उसकी उसकी जो प्रीचिंग थी, उसकी जो शिक्षा के द्वारा गैर कौमों की, अन्य जातियों की आंखें खोली जाएं, और खुदावंद ने उसको बुलाया और बुलाकर ये बताया, और ये आत्मिक रूप से उस वचन को उसे बताया गया, और उससे लोगों की आत्मिक आंखें खोली गईं, और इस तरीके से, और उसके लिए जो के उनके कान बंद थे वो खोले गए, और वो देख सके कि प्रभु ने इस समय में क्या किया है। और फिर खुदावन के फजल से ये सब कुछ हुआ, और हम खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्र करते हैं कि उसने और इस वक्त जो उसने मुझे बुलाहट दी और जो कलाम उसने मुझे दिया वो उतना ही सच है जैसे कि खुदावंद इस अपने कलाम में पाया जाता है, जैसे कि बाइबल जो है खुदावंद का पाक कलाम है, ये उतना ही सच मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और 2 अप्रैल 1962 को खुदावंद ने ये बुलाहट मुझे दी और कहा कि हे मेरे दास, इस समय के लिए, इस शहर के लिए तेरा समय अब पूरा होता है, मैं तुझे अलग अलग शहरों में भेजूंगा जिससे कि तू मेरे कलाम को जाके प्रचार कर सके। और फिर यही मैंने किया, यही मैंने पिछले सालों में किया, सारी दुनिया में मैं यात्रा करता रहा, मैं जर्नी करता रहा, और मैं देश देश गया, शहर शहर गया, और यही खुदावंद का खालिस और बड़ा अनमोल वचन जो है ये मैं प्रीच करता रहा। और अब खुदावंद इस चीज का खात्मा करेगा, पूरा करेगा। मैं एक बार समरी में इस बात को कह दूं, हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं, खुदावंद खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम सच्चाई में, जो हमने पहले और आखिरी समय को देखा कि कैसे वो शुरू हुआ और कैसे वो खात्मे पर है, जैसा कि इस कलाम में बताया गया, और जो उस वक्त हुआ और जो अब हो रहा है और आगे होगा, वो सब कुछ जो है खुदावंद ने हमको अपने फजल से देकर समझा दिया कि हम उस पर ईमान ला सकें, जैसा कि उसने बताया खुदावंद का। और ये जो मीटिंग भी आप सबके लिए आशीष बन जाए, आपके लिए वरदान बन जाए, सारी संसार के उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, मेहरबानी से जैसा खुदा का कलाम कहता है इस पर ईमान रखें, और फिर ये खुदा करेगा और खुदा देखेगा कि आप उसके शरीक हो जाएंगे, आप उस झुंड के शरीक हो जाएंगे जब वो तुरी फूंकी जाएगी और खुदावंद आएगा अपनों को लेने के लिए, अपने चुने हुओं को लेने के लिए आएगा, जैसे कि ये सच्चाई है, वही वहां पर होंगे जो आज इस मैसेज को, इस उद्धार के वचन को जो आज ग्रहण करते हैं और आज इस बुलाहट को जानते हैं, आज इस बुलाए जाने पर विश्वास करते हैं, आज इस भेजे जाने पर विश्वास करते हैं, और जो इस प्रकार जो प्रभु आज कर रहा है इसको भी मानते हैं, सिर्फ वो ही उस झुंड में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ऐसे ईमान किया जैसे कि कलाम कहता है, जो दूसरे थे उन्होंने तो अपने अपने कलाम को अपनी अपनी शिक्षाओं पर विश्वास किया। हम तो इस बात पर ईमान रखते हैं जो कि खुदा का कलाम क्या कहता है और कैसे कहता है। ये फर्क है, ये इस सच्चे विश्वास में और बनाए हुए विश्वास में, बनावटी विश्वास में ये फर्क है। खुदावंद हम सबको ऐसा फजल दे, ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने आप को जांचें और ये देखें कि क्या हम सच्चाई में खड़े हैं जैसे अब्राहम खड़ा था, जिसने के खुदा के कलाम को पर यकीन किया, विश्वास किया और वैसा उसके जीवन में हुआ। और हम भी खुदा के कलाम को सुने और ईमान रखें और देखें और उसका अनुभव करें जैसे कि वो सारी बातें हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाएं। खुदावंद की आशीषें आप सबके ऊपर, आत्मिक आशीषें, और उस आत्मिक सच्चाई को और सफाई को पाक रूह के वसीले से आप सबके ऊपर जागृत हो जाए, आप सब पर नाजिल हो जाए जो कि खुदावंद के इस आखिरी मैसेज को सुनते हैं, इस ट्रांसमिशन के द्वारा सुनते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में सुनते हैं और खुदावंद के लिए तैयारी होते हैं और खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और धीरज रखे रहें, इस आशा को थामे रखे रहें, ललायत ना हो जाएं, उतावले ना हो जाएं, धीरज रखे रहें। खुदावंद आप सबको आशीष दे, आप सबको आशीष दे और आप सबके साथ रहे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में। हालेलुया, आमीन। अब हम खड़े होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। भाई बोर्ड जो हैं वो प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पास कलाम को हमको दिया और हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो तेरा वर्ड, तेरा जो कलाम है ये वापस खाली नहीं जाता और जब वो अपने काम को पूरा कर लेता है, जिस काम के लिए तूने उसको भेजा है उस काम को वो जरूर कामिल करता है, पूरा करता है। तेरा धन्यवाद हो। और इस प्रचार के लिए जो आज सुबह वचन प्रचार किया, उस विश्वास के लिए जो के पाक लोगों को भेज दिया गया, सौंप दिया गया, एक ही बार में भेज दिया गया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद कर उन सारे रेफरेंस के लिए, उन सारी आयतों के लिए, वचन के लिए जो सुना गया और बोला गया खुदावंद। और अपने लोगों पर आशीष दे, सारे संसार के लोगों पर तेरी आशीष हो जहां तेरे लोग पाए जाते हैं, खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।